जैसे पहले सत्र में गीता बहन ने आपको बहुत सुंदर रूप से कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं उसके कई कारण भी बताए, उसके बारे में कैसे हमारे संस्कार व मनोवृत्तियों की स्थापना होती है उसके बारे में भी बताया। लेकिन आज हम देखेंगे कि जैसे आपको बता रहे थे गीता बहन कि दो प्रकार के विशेष कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष कहो, एक है जो तुरंत ही कोई विचारों में अंतर आने के वजह से होते हैं और फिर जब हम आपस में बातचीत करते हैं उसका सुलझना हो जाता है, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं तो वो समाधान मिल जाता है। लेकिन कई ऐसे संघर्ष होते हैं या आपस में विवाद होते हैं, टकराव होते हैं, जिसके लिए बहुत काल तक वो विवाद चलता रहता है और उसके लिए बहुत काल के लंबे समय तक चलने के समाधान की आवश्यकता है। और वहां आपने देखा कि ऐसे प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि इनकी जड़ों में क्या है, कौन सी नकारात्मकता है जिसके कारण ये विवाद बहुत समय तक रहते हैं, और फिर अगले सत्रों में आप देखेंगे कि इसका निवारण कैसे किया जाता है। लेकिन जैसे आप सुन रहे थे ये बातें सुबह से लेकर, तो हम एक छोटा सा एक वर्कशॉप करेंगे पहले, जिसमें प्रैक्टिकल में हम महसूस करेंगे कि आपस में जब हम कार्य व्यवहार करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उसमें आपस में संबंधों में किस रूप से हम संगठन को मजबूत बनाते हुए व्यवहार शुद्धि से उस कार्य को करते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल एक छोटा सा एक अनुभव हम लें। अब यहाँ क्योंकि हम सीमित परिस्थितियों में हैं, तो यहाँ हम सिर्फ आपस में बातचीत ही कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कोई कार्य तो नहीं कर सकते हैं। तो ये आशा रहेगा क्योंकि बड़ा संगठन है, फिर भी वर्कशॉप हम करना चाहेंगे क्योंकि आपको आपस में भी मिलने का एक मौका मिलेगा और प्रैक्टिकल में कोई चीज को अनुभव करने से उसका बहुत सुंदर अर्थ महसूस होता है। तो हम एक छोटा सा वर्कशॉप करेंगे, तो जैसे आपको वर्कशॉप के बारे में यहाँ बताया जाएगा, तो उसमें हम एक परिवार के बारे में, काल्पनिक रूप से एक परिवार के बारे में सोचेंगे, जो एक छोटा परिवार है, माता पिता और उनके दो संतान है, और इस परिवार के लिए आपको कार्य दिया जाता है कि आपको उनके घर की योजना बनानी है, उनको घर बनाना है और उसका प्लानिंग आपको करना है। तो यहाँ हम क्योंकि बड़ा संगठन है तो इसलिए हम छोटे छोटे ग्रुप्स में, 8-8 जन के ग्रुप्स में आपस में हम ये वर्कशॉप करेंगे। आपसे सहयोग की आवश्यकता होगी कि आप बहुत प्यार से और ध्यान से इसको आपस में करिएगा और उसके बाद उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, उसमें क्या हमको अनुभव होता है, उसके कई प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जिससे आपको आपस में तालमेल करने में क्या चीजों की आवश्यकता है उसके लिए और रोशनी मिल सकेगी। तो जैसे ये वर्कशॉप में आपको क्या योजना बनानी है वो आप जल्द ही यहाँ देख सकेंगे। आपस में जब आप ग्रुप बनाएंगे तो हमारे सेवाधारी यहाँ मौजूद हैं, शशांक भाई, विपुल भाई सभी मौजूद हैं, तो आपको सहयोग देंगे ही। लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाइएगा जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनसे आप परिचित नहीं हैं, तो जिनके साथ आप बैठे हैं उनके साथ नहीं, जिनके साथ आप आए हैं उनके साथ नहीं, लेकिन जो परिचित नहीं है, अभी यहाँ ही आपका उनका परिचय हुआ है, ऐसे लोगों के साथ आप ग्रुप बनाकर बैठिएगा। और जो ये योजना है, जैसे आपको बताया कि काल्पनिक रूप में हम एक परिवार लेंगे और उसमें हम देखेंगे, पहला स्लाइड रघु भाई अगर हम देख सके, तो उसमें हम देखते हैं कि पहले स्लाइड में कि इस वर्कशॉप में आपको एक जैसे प्लानिंग करनी है घर के लिए, उसमें क्या क्या प्लान करना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप कई लोग अनुभवी भी हैं, तो क्या क्या प्लान करना होगा घर में, घर लेना हो या घर की प्लानिंग करनी हो तो पहली चीज क्या चाहिए, बजट। तो पहले बजट प्लान करना होगा, फिर उसके साथ साथ साइट कहाँ लेनी है जगह, वहां वो आपको डिसाइड करना होगा। उसके अलावा हाँ, क्या साइज, कितने प्रकार, कितने कमरे, कितना साइज चाहिए आपको वो घर का, वो आपको निश्चित करना होगा। फिर उसके बाद लोकेशन तो निर्णय हो गया, उसके बाद इंटीरियर, तो इंटीरियर में आपको किस प्रकार का फर्नीचर, टाइल आदि जो चाहिए, मुख्य बातें जो है वो आपको डिसाइड करना होगा। और क्या सुविधाएं, जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो आपको उसमें नियुक्त करना होगा। तो जो हमारे सेवाधारी भाई हैं वो हाथ उठाए, सिर्फ रमेश भाई हैं, और भी दो तीन भाई जो हैं, बहनें भी यहाँ मदद कर सकती हैं। तो 8 के ग्रुप्स आपको बनाने हैं, तो आप आजू बाजू में देखेगा, उनके साथ आप बैठेगा जिनके साथ आपका परिचय पूर्व रूप से नहीं है। बंबई में आप एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं या फ्रेंड्स नहीं है, उनके साथ बैठेगा जिनको आप अभी यहाँ ही आपने जाना है या ट्रेन में शायद आपस में बातचीत हुई है। तो नए लोगों से बैठने से आपको बहुत अच्छा आपस में विचार विमर्श करने का भी मौका मिलेगा। तो जैसे हम देख रहे हैं, शायद मैंने आपको वैसे जानकारी तो दे दी है, पहली बात है कि आपको बजट नियुक्त करना होगा कि कितना खर्चा आपको करना है, दूसरा ये कितने कमरे चाहिए, लोकेशन दूसरा, तीसरा कितने कमरे, चौथा आपको उसका इंटीरियर कैसा चाहिए, मुख्य बातें फर्नीचर है, जो टाइल्स है, फ्लोर है, ये सब मुख्य चीजें, और जो सुविधाएं आवश्यक आपको चाहिए वो प्लानिंग करनी है। आपको 15 मिनट का समय मिलेगा जिसमें आपको आपस में बातचीत करनी है, और हरेक को कोई ना कोई रूप से योगदान उस बातचीत में जरूर देनी है, और कुछ रूप से रफ आइडिया के रूप से आप कुछ एक छोटी सी योजना 15-20 मिनट में जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो अभी हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ बैठे रमेश भाई, आप यहाँ आते जाएंगे तो 8 जन का ग्रुप डिवाइड होगा, आगे एक ग्रुप बैठेगा, पीछे भी बैठेंगे, जगह की कमी नहीं है, लेकिन आप उनके साथ बैठेगा जिनके साथ आप जानकारी एक दूसरे से नहीं है, परिचित न हो, यहाँ आकर ही परिचय हुआ हो, ठीक है। तो फिर आपको 15 मिनट के लिए आपको समय दिया जाएगा, इस हॉल के बाहर नहीं जाइएगा, इसी हॉल में ही बैठिएगा, ठीक है। तो जो हमारे सेवाधारी भाई है वो मदद करेंगे कि आपको कहाँ बैठना है, यहाँ साइड में भी जगह है, पीछे भी जगह है। पहला स्लाइड जो है दिखाई, जैसे यहाँ स्लाइड में आपको दिखाया ही है, इन मुख्य बातों पर आपको आपस में विचार करके एक योजना बनानी है। कि एक परिवार है, माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उस परिवार के लिए आपको योजना बनानी है, उनके घर के लिए प्लानिंग करनी है, जिसमें ये 4-5 मुख्य बातें हैं। पहले तो बजट है, फिर स्थान है, फिर कितने कमरे चाहिए आपको, और फिर जो इंटीरियर जो आपको करना है उसके लिए आपको योजना बनानी है। तो एक परिवार के लिए, छोटे परिवार के लिए, माता पिता और 2 संतान, उनके लिए आपको ये घर की योजना बनानी है। 8 जन मिनिमम हो जो आपस में बैठकर ये बनाएं। हमारे सेवाधारी भाई आपको मदद करेंगे ग्रुप्स में जाने के लिए। अभी से लेकर आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है, 15 मिनट्स, ठीक है? फिर जब समय पूरा होगा तो हम आपको कहेंगे। आप संगठन को, आपके ग्रुप को लेकर साइड्स में भी बैठ सकते हैं, इस हॉल में भी, हॉल के बाहर नहीं जाएं, क्योंकि वर्कशॉप में आए हैं ना, तो वर्कशॉप में आपस में भी बातचीत करनी है। बड़ा संगठन है इसलिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है, कि आप जरूर अपना ग्रुप बना लीजिए। समाप्त कर लीजिए और आप में से कोई भी एक व्यक्ति को चुन लीजिए जो जवाब देंगे ग्रुप के तरफ से। आप 2 मिनट में अपने विचारों को समेट लें और ग्रुप में से एक व्यक्ति को चुन लें जो जवाब देंगे। अब हम ये प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। यहाँ बेंची भी बैठ सकते हैं। पहला प्रश्न है कि आपके ग्रुप में से सभी ने पार्टिसिपेट किया? अच्छा, जो भी एक एक ग्रुप में से एक एक व्यक्ति है वो जवाब देंगे, क्योंकि हर एक बोलेगा तो समझ सुनाई नहीं देगा। तो हर एक के ग्रुप में से हर एक ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है? हर एक को लगा कि हर एक के विचारों का आदान प्रदान हुआ, हर एक के विचारों को लिया गया, हर एक के विचारों के बारे में पूछा गया, हर एक को ऐसे लगा कि हर एक को इन्वॉल्व किया गया। हाँ, अच्छा। तीसरा, ऐसे आप में से कोई व्यक्ति था जिसने रुचि नहीं बताई? चलो ये बातचीत कर रहे हैं, घरे बातचीत करें, कोई रुचि नहीं बताई? सबने रुचि बताई? एक या दो थे जिसने रुचि नहीं बताई? आप में से किसी ने, किसी को ऐसा लगा कि ग्रुप सारा आपस में बातचीत कर रहा है, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, मेरे विचार तो कोई पूछ ही नहीं रहा है? नहीं, ऐसा लगा? नहीं लगा, नहीं लगा। अच्छा, ये प्रश्न आपको इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि विचार वास्तव में जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपस में लोगों में, तो कई बार ये होता है कि मानसिक रूप में आपस में जब बातचीत करते हैं तो अगर किसी के विचारों का सहयोग हमने न लिया हो, किसी के विचार हमने नहीं पूछा है, उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है, तो उनके मन में उस परिस्थिति में अपने प्रति या दूसरों के प्रति नकारात्मकता आ जाती है, क्योंकि उनके आइडियाज को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो आइडियाज को न लेना जैसे एक रिस्पेक्ट नहीं दिखाया है, जैसे आपको गीता बहन ने बहुत अच्छा बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग जब होती है तो उसका मुख्य कारण होता है कि एक दूसरे को हमने रिस्पेक्ट नहीं दिया है, जो हमारे भावनाओं में हमने जो शुभ भावनाएं हैं उसको व्यक्त नहीं किया है रिस्पेक्ट के रूप में। तो उस रूप में हम देखते हैं कि आइडियाज को लेना माना उनको रिस्पेक्ट देना। अगर हम किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं तो वो अपने आप को अकेला, लेफ्ट आउट समझ लेता है। तो उनके मन में जो नकारात्मकता आती जाती है, फिर भविष्य में उस संगठन में वो बैरियर्स आते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। अब हम ये देखेंगे, आपने ये प्रैक्टिकल में अनुभव किया, यहाँ ये अनुभव करना बहुत सहज लगा, नहीं? आपस में शेयरिंग, आपने कहा किसी को भी एक दूसरे के प्रति मैंने हर एक को लगा कि हर एक के आइडियाज इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, हर एक ने रुचि से बातचीत की, यहाँ तक कि देखा कि आपको कहा भी समेट लीजिए तो भी आपको समेटना मुश्किल था, बातचीत करना था। आप योजना पर आ सके, एक योजना पर निश्चित रूप में आ सके, अच्छा आपस में सहमत होकर आ सके। लेकिन प्रैक्टिकल में जब सिचुएशंस होती हैं तब इतना ही सहज होता है? तब बहुत चैलेंजेस होते हैं, नहीं? तो उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, जब प्रैक्टिकल में सिचुएशंस में कोई छोटी सी बात का भी अगर हमें निर्णय संगठन में करना हो, चाहे परिवार है, कोई सामाजिक संस्थाओं में हम आपस में मिलते हैं या कार्य क्षेत्र पर हम आपस में मिलते हैं, तो आपस में बहुत वाद विवाद हो जाता है छोटी छोटी बातों में भी, तो उसके क्या कारण है? तो आज हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट एक है आंतरिक रूप में और एक है बाह्य रूप में।
जितना ही बाह्य रूप में कॉन्फ्लिक्ट्स महत्वपूर्ण है उसको जानना और ये डेंजरस होते हैं, जो संबंधों में आपस में वाद विवाद होता है, अनबन होती है, टकराव होता है, वो बाह्य रूप से कॉन्फ्लिक्ट्स जितने ही मैनेज करना आवश्यक है उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आंतरिक जो द्वंद्व है। कई बार ये द्वंद्व के बारे में हम इतने जागरूक नहीं रहते और हम देखते हैं कि बाह्य रूप में कॉन्फ्लिक्ट होने का मुख्य कारण यह है कि कहीं ना कहीं अंदर में कॉन्फ्लिक्ट है, अंतर में ही कोई संघर्ष है, अंतर में ही कोई वाद विवाद है, अंतर में ही कोई द्वंद्व है, अंतर में ही कोई विचारों का आपस में अंदर ही टकराव है। जब तक उसको हमने नहीं सुलझाया है, जब तक वहां सूत मूंझा हुआ है, तब तक जब हम संगठन में आते हैं, कारोबार करते हैं, तो फिर से वो वाद विवाद संगठन में भी दिखाई देता है। तो हम ये देखेंगे पहले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कौन से हैं। तो बहुत सुंदर रूप में यहाँ तीन बातों के रूप से दिखाया है कि हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक है भूतकाल की वजह से। तो भूतकाल में जब हम देखते हैं तो पास्ट के कोई हमारे एक्शंस हैं, कोई हमारे कर्म ऐसे हैं जिसके प्रति अभी हमें लगता है कि ये हमने क्यों किया, कोई गिल्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मेरे भाग्य में ऐसा ही क्यों लिखा हुआ था। तो पास्ट की बातों को जब हम उस गिल्ट के रूप में या उस नकारात्मक भावनाओं से हम याद करते रहते तो ये भी हमारे अंतर में इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। यहाँ जब भी इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसके रिजल्ट ये है कि हमारे अंतर के जो स्वमान है वो स्वमान जो है खत्म होता जाता है। तो पहला है कि क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, अगर कोई कर्म स्वयं के कर्म के वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो मैंने ऐसा क्यों किया, अब मैं क्या करूं, ऐसा हुआ उसकी वजह से, ये हुआ इसकी वजह से, पता नहीं आगे क्या होगा, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कोई भी भाष में जो बातें हुई हैं। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान में कई हम उदाहरण देखते हैं, एक बार हमारे सेंटर पर एक स्टूडेंट आए थे जो वहां, जैसे आपको योगिनी बहन ने कहा कि वहाँ हमारे पार्ला सेंटर के आसपास कई कॉलेजेस हैं, तो वहाँ एक स्टूडेंट आए थे जो मेडिटेशन सीखने के लिए आए थे। तो उस समय उसको लगा कि वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है, पढ़ाई में जो सुन रहा है, टीचर जो सुना रहा है वो समझ ही नहीं रहा है, न वो परफॉर्मेंस उसके रिजल्ट में दिखाई दे रहा था। तो उसको किसी ने कहा होगा कि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी एकाग्रता, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। तो 5 दिन वो बहन के साथ बैठे, जैसे यहाँ आप कोर्स कर रहे हैं, राज्योग शिविर कर रहे हैं, तो सेंटर्स पर 1-to-1 भी हम कोर्सेज कराते हैं। लेकिन 5वें दिन हम देखा गया कि वो सुन तो रहा था, उसने कई प्रश्न भी पूछे, लेकिन जैसे अंतर में कुछ जा ही नहीं रहा है, कुछ अनुभूति जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। मेडिटेशन रूम में भी बैठता था उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए शायद अच्छा भी लगता था, लेकिन फिर प्रैक्टिकल में उसको वो प्रयोग नहीं कर पा रहा था। तो 5-6 दिन के बाद फिर देखा तो उसने खुद ही कहा कि मैं सीख ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं मेडिटेशन हो रहा है। तो फिर कोई बहन उनके साथ बैठी तो समझ में आया कि वो अभी तक उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है, इतना द्वंद्व है अंदर, इतना अंदर डिप्रेसिव थॉट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट इतना है कि मेडिटेशन सीखने के लिए भी जो मानसिक तैयारी होनी चाहिए, जो स्थिरता होनी चाहिए, वो नहीं है। तो कुछ समय लगा कि उनके साथ बहन बैठती थी और सिर्फ काउंसलिंग उनको करा रही थी कि उनके जो अपने विचार हैं, जो पास्ट की बातें हैं। तो जब भी वो आते थे, वो स्टूडेंट जो आता था, 1 घंटे के लिए बैठता था या आधा घंटा जितना उसको समय है पहले से वो फिक्स कर लेता था, तो जो भी वो सुनाता था पास्ट की कोई बात, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, इसने ऐसा मेरे साथ किया, मेरे मदर ने ऐसा किया, मेरे फादर ने ऐसा कहा, मेरे ब्रदर ने मुझे ये कहा, ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और वो प्रश्न जो अंदर ही अंदर उसके द्वंद्व के कारण थे, उसका वर्तमान और उसके भविष्य पर उसका प्रभाव रहा था। वर्तमान में जो वो सुन रहा है उसके एजुकेशन में उसको समझ नहीं पा रहा है, फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में बार बार आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ उसका तालमेल नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं कि पास्ट की कोई भी बातें, अगर सूत मूंझा हुआ है, अगर हम पास्ट की कोई बातों को स्वीकार नहीं कर पाते, जैसे नहीं कोई, हम देखते हैं कि कभी कभी जब कंस्ट्रक्शन होता है घर का तो कहां हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट छोड़ देते हैं और वहां कोई तार छोड़ देते हैं लेकिन वो तार खुली हुई रहती है, तो जब सफाई आदि करेंगे तो वहां शॉक लगेगा। तो ऐसे पास्ट की जो बातें जिसका हमने समाधान नहीं किया हुआ है, जिसको हमने स्वीकार नहीं किया हुआ है, एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, वो खुली तारों के रूप से बार बार हमें वर्तमान में दुख का अनुभव कराती है, हमारे स्वमान को नीचे ले आती है। इसके वजह से वो पास्ट का कॉन्फ्लिक्ट हमने रिजॉल्व नहीं किया हुआ है, इसलिए वर्तमान में जो हम कार्य करते हैं उस पर उसका असर होता है और भविष्य पर तो उसका असर होना ही है। तो एक है पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट जो है, पास्ट की बातों को, चाहे हमारे द्वारा कोई की हुई बात है, कोई कर्म हमने किया हुआ है, या हमारे प्रति हमें लगता है किसी और ने किया है, या अपने भाग्य के प्रति हमें द्वंद रहता है कि ऐसा ही क्यों। दूसरी बात है प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं उसमें हमको हमारे जो इच्छाएं उस अनुसार हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। हम प्राप्त कुछ करना चाहते हैं, वो प्राप्ति नहीं हो रही। तो संतुष्टता की कमी वर्तमान में ही प्रेजेंट में जो हमें अंतर में संतुष्टता होनी चाहिए। जॉब तो कर रहे हैं व्यक्ति, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। संबंध तो है, परिवार तो सब कुछ है, लेकिन उसमें जो आत्मीयता चाहिए, जो उसमें परिवार में समीपता चाहिए, वो उसमें संतुष्टता नहीं है। तो कहेंगे नहीं, पत्नी मुझे नहीं समझ रही या बच्चा मेरी बात सुनता नहीं है। तो जो भी इच्छाएं हैं उससे वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं डिजायर जो है वो पूर्ति नहीं हो रही। तो भविष्य वर्तमान में अपने जीवन के प्रति ऊंचा लक्ष्य नहीं है, ऊंचे लक्ष्य की कमी, ऊंचे उद्देश्य की कमी के कारण वर्तमान में जो वो कर रहे हैं उसमें जब अप्राप्ति होती है, क्योंकि हम समझते हैं कि वर्तमान में जो भी हम कर रहे हैं कभी कभी उसमें हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, कभी कभी कई कारणों के वजह से उसमें हमको तुरंत उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वो अप्राप्ति जब सामने आ जाती है, जब हमारे जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, तो उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, तो उसके वजह से भी वर्तमान में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और भविष्य के लिए अगर देखा जाए तो भविष्य में क्या क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या होगा, इनसिक्योरिटी भविष्य के लिए, क्योंकि वर्तमान में असंतुष्टता है तो उसके लिए भविष्य के लिए इनसिक्योरिटी। दूसरा, हम दूसरों की बात कभी देखते भी हैं कि अरे इनको ये हुआ, इनकी आयु बढ़ गई है, अभी ये बीमारी हुई, तो हमको भी अपने भविष्य के लिए चिंता हो जाती है, हमको भी ऐसी बीमारी हो गई तो क्या होगा, हमारा कौन ध्यान रखेगा, हमारे लिए उस धन, हमको मेडिकल के खर्चे के लिए धन कहाँ से आएगा, क्या होगा, हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो अपने भविष्य के लिए निर्णय के आधार से निर्णय शक्ति और इनसिक्योरिटी, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए भी हमें समझ नहीं है, और दूसरा भविष्य के लिए भय। तो हम देखते हैं आज भविष्य के लिए समझ होना, उसके लिए हमें प्रेरणा की शक्ति, जिसको हम कहते हैं इंट्यूटिव पावर जो है, वो होना आवश्यक है। क्योंकि भविष्य के बारे में तो हम जानते नहीं है, लेकिन वर्तमान में, वर्तमान के जो चिन्ह हमारे सामने हैं, वर्तमान की जो बातें हमारे सामने हो रही है, उसके आधार से हम भविष्य को समझ सकते हैं। तो वो जो शक्ति है जिसको दुनिया में भी इंट्यूशन कहते हैं, आपने जरूर ये शब्द सुना होगा, इंट्यूशन जो है प्रेरणा की शक्ति, जिसमें हमको महसूस होता है कि हाँ ये हमें करना चाहिए। उसका डिक्शनरी मीनिंग है डायरेक्ट एक्सेस टू ट्रूथ विदाउट द सपोर्ट ऑफ फैक्ट्स, अर्थात आपको सत्य का भान हो जाए क्या करना है क्या नहीं करना है, उस सत्य का भान हो जाए, लेकिन आपके सामने कोई जानकारी नहीं है, तथ्य नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको भान, आभास हो जाएगा कि ये मुझे करना चाहिए, ये होना होगा, इसलिए इसके लिए ये पूर्व तैयारी मुझे करनी चाहिए, ऐसा हो सकता है इसलिए मुझे ये करना चाहिए। तो उस रूप में हम देखते हैं कि जितना हम अपने इंट्यूटिव पावर्स को डेवलप करते जाते हैं, इसलिए भविष्य के जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे हम बच सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अंतर में इन तीनों के कारण कोई ना कोई द्वंद होता है, और ये जो द्वंद बहुत समय अगर रहता है अंतर ही अंतर में, तो हमारा स्वमान बहुत कमजोर हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे मन में बहुत समय तक वो डिप्रेसिव फीलिंग्स रहती है, और उसके कारण आजकल हम देखते हैं कि लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है, और फिर उनकी जो मानसिक जो क्रियाएं हैं, उनकी जो मानसिक रूप में या हम कहेंगे उनके ब्रेन के जो केमिकल बैलेंसेज हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके वजह से फिर आगे उनको बहुत तकलीफ होती। तो हम देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट उतना ही हम कहेंगे जरूरी है रिजॉल्व करना जितना ही बाह्य रूप में, ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन व्यक्ति स्वयं के प्रति संतुष्टता नहीं महसूस कर रहा है। कई बार आप देखेंगे कि आसपास व्यक्ति के सब कुछ ठीक है, आप उसको देखेंगे आपको लगेगा इसका तो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, लेकिन उसके अंतर में वो अपने स्वयं से संतुष्ट नहीं है, कोई ना कोई अंतर में द्वंद्व महसूस होता है। तो हमें ये पहले पहचानना होगा कि हमारी जो द्वंद का कारण है उसकी जड़ कहाँ है, भूतकाल की वजह से है, वर्तमान की वजह से है, या भविष्य की कोई चिंता की वजह से। और उसकी जड़ का मुख्य कारण अगर देखें तो पास्ट के बारे में देखें तो या तो कोई गिल्ट है, कोई कार्य जो हमने किया हुआ है उसके प्रति हम बार बार सोचते रहते हैं, या हमारे साथ किसी ने किया है उस बात को हमने पकड़ा हुआ है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो आध्यात्मिक ज्ञान की समझ से ही हम इस पास्ट को हम भूल सकते हैं, या इसको हम कोई अगर व्यक्ति ने हमारे साथ कोई कार्य किया है जो हमको लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था तो हम उसको क्षमा भाव से क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उसका बोध जो है नहीं तो हमारे साथ सदा रहेगा। ये पास्ट जो है, जैसे एक बहुत सुंदर किसी ने उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति है जो एक खाड़ी से गुजर रहा था, जंगल था लेकिन वहां खाड़ी थी क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था, तो वो वहां से गुजर रहा था तो तुरंत उसने आवाज सुना एक शेर का, तो जैसे शेर का आवाज सुना तो वो भागने लगा, और भागते भागते वो एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां भी वहां पहाड़ी इलाका था, तो बस नीचे खाड़ी थी और वो उस पहाड़ के बस टोक पर आ पहुंचा था। अब उसके लिए नीचे तो देखा खाड़ी है तो उसने नीचे जंप तो मारा, और वहां कुछ झाड़े थी, कुछ बहुत बड़े झाड़ थे तो उसने उस झाड़ को पकड़ लिया। अब जैसे वो लटक ही रहा था वहां शेर आकर सामने खड़ा हो गया, ऊपर देखा तो शेर है, नीचे देखा तो वो खाड़ी है। अब वो व्यक्ति को क्या हम सुझाव दें, क्या करना चाहिए उसको? बहुत मुश्किल का समय है, आप चाहेंगे कि आप कभी ऐसे समय पर नहीं पहुंचे तो क्या करना चाहिए उसको? ऊपर चढ़कर वो शेर से फाइट करें जी, फेस द सिचुएशन, कैसे फेस करें जी? पेशेंस रखें, बस वहां वो झाड़ पर लटकते रहे, धीरज रखें। अच्छा, बैठने का तो कोई मौका है नहीं, उसको तो वहां लटकना ही है। अच्छा, परमात्मा को याद करें, उस समय परमात्मा की याद में रहना उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। नहीं, अभी तो पहुंच गया है ना, अभी क्या करें? वो फिर हम फास्ट में जा रहे हैं लेकिन अभी क्या करें? हाथ छोड़ दे तो नीचे खाड़ी में वो गिर जाएगा। हाँ जी, बचाने के लिए आएगा, लेकिन वर्तमान में करे क्या वो? अब वो व्यक्ति ने क्या किया, उसने वो झाड़ जिसको पकड़ रहा था, वो झाड़ियां थी और उसमें बहुत सुंदर छोटे छोटे बेर थे, तो उसने वो बेर खाने लगा। अब आपको लगेगा ऐसे समय पर बेर खाने का थोड़ी समय है, लेकिन ये एक दृष्टांत है, सत्य घटना नहीं है, शायद ऐसे काल्पनिक है, लेकिन जो शेर है वो हमारे भूतकाल को दर्शाता है कि भूतकाल की जो बातों को हम भूल नहीं पाते, चाहे किसी ने हमारे साथ कुछ कार्य किया है गलत, या हमसे कोई गलतियां हुई है, या हमारे भूतकाल की जो ऐसे नकारात्मक परिस्थितियां हैं जो हमारे पीछे सदा भागते रहते हैं, जिससे हम दूर भागना चाहते हैं, जिसको हम भूलना चाहते हैं, वो जैसे उस शेर के रूप से हमारे पीछे हमेशा है। और भविष्य है वो खाड़ी के मिसर, क्योंकि खाड़ी जो है वो अंधेरा है, पता नहीं वहां क्या है, तो भविष्य के बारे में हम अज्ञानता है। तो वर्तमान में रहते हुए हम अपने भविष्य के प्रति जो हमारी गिरत है, जो भी नकारात्मक बातें हैं, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? चाहे कोई अगर व्यक्ति ने हमसे कोई किया हुआ है कोई बात, तो उसको हम कैसे क्षमा भाव से उसको लेट गो कर सकते हैं? चाहे हमारे साथ कोई परिस्थिति अगर हुई है तो उसको इस वर्तमान में, उस समय तो वो नकारात्मक थी, उस समय वो बहुत दुर्घटना थी, उस समय बहुत नुकसान हुआ उससे, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ हमें सकारात्मकता दिखाई देती, कोई अनुभव हमने प्राप्त किया, कोई उससे हमारी उन्नति हुई, तब वो भूतकाल की बातों को हम छोड़ सकते हैं। और भविष्य के लिए हम समझते हैं कि जो भी होना है उसका आधार वर्तमान है, भविष्य तो बनता ही नहीं है वर्तमान के बिना, वर्तमान के कदम से ही भविष्य बनता है। तो वर्तमान में जब हम अपने जीवन को ऊंचे लक्ष्य के आधार से देखते हैं, तो वर्तमान में प्रेजेंट में जो हमारी डिजायर्स हैं, जो अल्पकाल की है, जो डिजायर्स जो हैं, शायद वो संतुष्ट होंगी शायद नहीं, अगर हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो भी उसमें हम अगर अपने ऊंचे लक्ष्य को सामने रखते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है। तो हमारे ये इनर कॉन्फ्लिक्ट को हम जब सॉल्व करते हैं तब बाह्य रूप से भी कॉन्फ्लिक्ट में आना सहज, उसको सॉल्व करना सहज होता है। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट ये रहता है कि हमारे अंदर की स्वमान की शक्ति जो है कम होती जाती है, और या तो अभिमान आ जाता है या हीन भावना आती, तो उसके बारे में हम और देखेंगे। अब बाह्य रूप से कॉन्फ्लिक्ट कौन से हैं ये हम देखेंगे। तो बाह्य जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, लोगों के साथ संबंधों में कॉन्फ्लिक्ट जो है, तो उसमें किस कारण से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसकी जड़ें क्या है। क्योंकि वैसे भी हम देखते हैं जब तक जड़ को हमने नहीं निकाला है तब तक वो चीज बार बार आती रहेगी। जैसे आपको गीता बहन ने भी सुनाया कि तुरंत हम कई बार कोई चीज का सोल्यूशन व्यवहारिक रूप में भय के कारण करा देते हैं। भाई अभी ये भय किसी को दे देते हैं तो वो सुझाव हो जाता है, आपस में समझौता हो जाता है, लेकिन अंतर में अभी तक मन में वो टकराव है, मन में जो एक दूसरे के प्रति भावना में अंतर है, नकारात्मकता है, तो उसका परमानेंट सोल्यूशन हमको नहीं मिलता है। तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो है बाह्य रूप में, एक तो अनुभव में अंतर है। हम हर एक ने अपने अपने जीवन यात्रा में अलग अलग प्रकार के अनुभव किए हैं, तो उस अनुभव में अंतर है इसलिए भी हम वाद विवाद में कई बार आ जाते हैं। दूसरा, संस्कारों में अंतर है। अगर आप देखें कि घर में भी दो तीन बच्चे भी हों तो पालना तो उनको वही मिलती है, लेकिन संस्कारों में अगर हम देखें तो अंतर है। जैसे आज सुबह कोई आपको आत्मा का परिचय मिला तो उसमें आपने देखा कि आत्मा में तीन मुख्य शक्तियां हैं, कौन सी, मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। संस्कार कैसे बनते हैं, रिविजन आप कर सकते हैं। संस्कार कैसे बनते हैं, हाँ, जो कर्म हम बार बार करते हैं उसके आधार से संस्कार बनते हैं। तो जैसे बहन ने सुबह आपको बताया भी कि कुछ संस्कार आत्मा लेप भी आती हैं, तो वो संस्कारों में वर्तमान में तो उनको वही वातावरण मिल रहा है, माता पिता की पालना मिल रही है, लेकिन जो उनके पूर्व संस्कार है उसमें अंतर हो सकता है। और दूसरा, हम कारोबार में आते हैं तो अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो हरेक के अपने अपने संस्कार होंगे। अगर उस संस्कारों में बहुत बड़ा अंतर होता है, ऑपोजिट होते हैं संस्कार, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तीसरा है विचारधाराएं या मान्यताएं। तो कार्य के प्रति भी अलग अलग मान्यताएं हैं, जीवन के प्रति भी हरेक की अपने अपने अनुभव के आधार से मान्यताएं बन जाती। जो हमने इतने जीवन में अपने अनुभव प्राप्त किए हैं उसके आधार से हमारी मान्यताएं हैं, तो ये तीनों चीजों में अंतर आ जाता है, अलग अलग भिन्नता आ जाती है। तब हम देखते हैं कि उन अंतरों को जो हम सामने रखते हैं उस अंतर के आधार से हम व्यवहार में आते हैं तो ईगो आ जाता है, जिसकी वजह से टकराव आता है। जैसे पहले भी आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट में ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, लेकिन जब हम सामने वाले व्यक्ति के को ही रॉन्ग मानते, उसके अनुभवों को हम गलत मानते, नहीं नहीं इनका ये अनुभव ये ठीक नहीं है, नहीं ये इनका संस्कार ठीक नहीं है, नहीं इनकी ये मान्यता है ही नहीं ठीक, तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्योंकि हमारे अपने अनुभवों के बारे में, हमारे अपने संस्कार के आधार से या हमारे अपने जो मान्यताएं हैं उनका अहम भाव आ जाता है, तब वो कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर हम सामने वाले व्यक्ति के अनुभवों को समझने का प्रयास करते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उनके किस कारण की वजह से उनके अनुभव हुए हैं और उस अनुभवों के आधार से वो ऐसा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, तो शायद उसके व्यवहार को हम स्वीकार कर सकें, उसको समझ सकें। या अगर हम उनके संस्कारों को पहचान सकते हैं कि इनके संस्कार ऐसे हैं इसलिए ये ऐसा व्यवहार में हमारे साथ कर रहा है, इसकी वजह से ये इस रूप से हमारे साथ चल रहा है, तो फिर शायद हम उसके वर्तमान के जो व्यवहार है या कार्य हमारे साथ करने का ढंग है उसको हम समझ सकते हैं। एक स्वीकार करना है, लेकिन एक है समझना, जानना, और तीसरा है कि मान्यताएं। जब हमको समझ में आ जाता है कि इनकी ये मान्यता है इसके वजह से ये इस रूप से ऐसा कार्य करते हैं। जैसे हम अगर उदाहरण के रूप में लें कि किसी की मान्यता है कि कोई भी कार्य जो है उसको शांति से, धीरज से, धीरे से करके उसको पूरा करना, संपूर्ण रूप से करना, वही सफलता है। और कोई व्यक्ति का कार्य करने का ढंग ये है कि हर कार्य को हम चार पांच कार्य साथ में देकर जितना जल्दी उसको पूरा कर सकें वो करना आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो, भले एक दो पूरा नहीं हो तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कार्य करो और स्पीड से काम करो तो उसको सफलता माना जाता है। अब दोनों के मान्यताओं में अंतर हो गया, बहुत बड़ा अंतर है। तो जब वो दोनों ही अपनी मान्यता को ठीक ही समझते हुए आपस में कार्य करेंगे, अपनी मान्यता का अहम भाव रखते हुए आपस में कारोबार करेंगे, तो क्या होगा? टकराव होगा। या संस्कार है, तो किनका संस्कार होगा कि वो बहुत इमोशनल है, हर एक चीज में भावुक हो जाते हैं, और कोई व्यक्ति है कि बहुत मतलब लॉजिक से, तर्क से ही काम करेगी। ठीक है, भावना तो ठीक है, लेकिन तर्क से, ये ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं, सीधा बोलना है क्योंकि ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई फ्रैंक रहना या स्पष्टवादी रहना ये जरूरी है, तभी सफलता होगी। तो उन दोनों के संस्कारों में अंतर है। अभी वो अपने ही संस्कार को सही मानते हुए अगर चलेंगे, सामने वाले के संस्कार को नहीं पहचाना, उसको नहीं समझने का प्रयास किया, तो क्या होगा? आपस में टकराव होगा ही। अगर हम अनुभव प्राप्त करते हैं तो हमारे अपने अनुभव को ही हम सही अगर मानते हैं, अनुभव में अंतर होना ये तो जरूरी है, इन तीनों में अंतर होना ये तो आवश्यक है, क्योंकि हम भिन्न हैं, हमारे अलग अलग हैं, अपने हम विशेषताओं से संपन्न हैं, हमारे अपने अपने जीवन में अपने अपनी भिन्नता है। लेकिन जब हम अपने ही अनुभव को ही सही मानते हैं, किसी ने अपने जीवन को सफल बनाया लेकिन उसके ये अनुभव है, और आपने अपने जीवन को सफल बनाया आपके ही अनुभव है, लेकिन आप मानते नहीं उसी से ही सफल व्यक्ति बन सकता है, ये कार्य को इसी ढंग से ही, इसी अनुभव से ही किया जा सकता है, ये बात को इसी रूप से समझा जा सकता है, और सामने वाले के अनुभव को आप नकार देते हैं, उसको सुनने का ही प्रयास नहीं करते, उसको समझने का ही प्रयास नहीं करते, तब आपस में टकराव होता है। तो ये तीनों चीजों में अंतर तो रहेगा ही, लेकिन जब हम इन तीनों चीजों के अंतर को, सामने वाले व्यक्ति के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं, उसको सुनने का प्रयास करते हैं, तो आपस में समझौता होने की संभावना बढ़ती, समीपता आ जाती। लेकिन अगर हम अपने चीज को ही मानते हैं, सही मानते हैं, जिसको हम अहम भाव कहते हैं, तब टकराव आता। अब ईगो क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि हम जानते ही हैं कि मूल कारण संबंधों में ज्यादा करके ईगो आता है, तो ईगो क्या है उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट देखेंगे। तो यही समाधान की एक मुख्य, हम कहेंगे एक बाधा है, क्योंकि आज हमारे में से जो भी हम यहाँ बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि समस्याओं का समाधान कैसे करना है, क्योंकि आप कर भी रहे हैं आपके जीवन में, आज तक आपने इतने जीवन में जो ऐसी समस्याओं का आपने सामना किया है, संबंधों में या स्वयं के साथ आपने कई बार समाधान किए, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं संबंधों में जिसका समाधान करना अभी मुश्किल लग रहा है, या जहां हम बीच बीच में बैरियर्स आ जाते हैं, वहां अटक जाते हैं, तो वहां महसूस करते हैं कि मुख्य कारण अहम भाव है। तो इसके बारे में बहुत अच्छा कहा गया है कि ये हमें प्रयत्न हमको हम करते हैं कोई चीज को समझने के लिए, लेकिन हम उसका आकार देखते हैं, उसका आकार जो इमेज देख लेते हैं, लेकिन उसके जानकारी जो उसमें है वो नहीं देखते। अर्थात जैसे हमने कोई बुक देख लिया, तो बुक जो है वो एक साधारण सा और बहुत पुराना सा बुक जैसे हमने देखा, ये तो बुक पुराना सा यहाँ पड़ा है, हमने उसको बाह्य स्वरूप से देखा, उसके आकार को देख लिया, लेकिन उसकी जानकारी क्या उसमें लिखी है वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर हमने जानकारी पढ़ा तो हमको लगता है अरे ये तो बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है, ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात, अरे ये तो बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी जानकारी को समझा, उसकी स्पष्टता को समझा, तो उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आ जाता है। लेकिन ईगो ये है कि हम बाह्य चीज को ही, हम बाहर से ही उस आकार को देख लेते हैं और अपनी मान्यता उसके प्रति क्रिएट करते हैं। तो दूसरा है कि इसके लिए अगर हमें समाधान की आवश्यकता है तो हमें गहराई में जाना होगा, उस प्रॉब्लम की गहराई में जाना होगा, तब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि जब हम व्यक्तियों के साथ संबंध में आते हैं और आपस में टकराव होता है, तो उस व्यक्ति के बाह्य स्वरूप को तो हम देखते हैं कि व्यक्ति मुझे कोई ऐसे अपशब्द बोल रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मुझे ऐसे जोर से आवाज से व्यवहार कर रहा है, बोल रहा है, तो उस रूप से हम देखते हैं, तो वो बाह्य स्वरूप है, वो इमेज है। लेकिन उसकी गहराई में अगर हम जानकारी प्राप्त करें कि इस समय इसकी मानसिक स्थिति क्या है। मुझे याद है हमारे एक साथ बहुत अच्छे एक फैकल्टी हमारे हैं ली भाई, जो विशेष अभी ऑस्ट्रेलिया में सेवा में हैं और यहाँ भी मधुबन में भी आते रहते हैं। विशेष हमारे यूथ वर्कशॉप बहुत अच्छी तरह कराते हैं, हमारे यूथ प्रोग्राम्स के बहुत अच्छे फैकल्टी हैं। तो बहुत वर्ष पहले, मुझे लगता है 4-5 वर्ष पहले बम्बई में आए थे विले पार्ले में, और आते रहते हैं, प्रोग्राम्स रखे थे। तब हम एक स्कूल में गए थे और उस स्कूल में हरी भाई बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझा रहे थे। तो उन्होंने वो इसी चीज को समझा रहे थे और ईगो और क्रोध के ऊपर, तो उन्होंने क्रोध व्यक्त किए हुए एक व्यक्ति का, क्योंकि ली भाई बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, तो उन्होंने एक क्रोध व्यक्त किए हुए व्यक्ति का वो पूरा एक्टिंग करके दिखाया, कैसे क्रोध व्यक्ति व्यक्त कर रहा है, और उस एक्टिंग को उन्होंने स्लो मोशन में किया। जैसे हम कभी कभी आप टीवी पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ स्लो मोशन दिखाते हैं धीरे से वो चित्र, तो उस रूप में जब उन्होंने किया, और फिर उन्होंने सामने वाले सभी बच्चों को पूछा कि आपको उस चेहरे में क्या दिखाई दे रहा है। अब आप याद कीजिए, कोई भी व्यक्ति, स्वयं भी हम जब क्रोधित हो जाते हैं और हम बहुत गहराई से स्लो मोशन में अपने चेहरे को देखें, अपने चेहरे के हाव भाव को देखें, तो उसमें क्या दिखाई देता है। बाहर से अगर हम ऐसे ही देखते हैं तो लगता है ये व्यक्ति क्रोध कर रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, लेकिन अगर हम स्लो मोशन में उसके चेहरे को, उसके हाव भाव को देखें, उनकी आंखों के अंदर देखें, झांके उसके चेहरे के हम हाव भाव को देखें, तो क्या दिखाई देगा उस व्यक्ति की, उस समय की मानसिक स्थिति क्या है? तंग व्यक्ति दिखाई देता है, और बहुत अपसेट व्यक्ति है, और क्या दिखाई देता है भाव? अच्छा, और उसकी मानसिक स्थिति बाह्य रूप से तो भयानक लगती है, जोर से बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति, उसको अपने ऊपर संतुलन नहीं है, और हाँ, उसकी मानसिक स्थिति क्या दिखाई देती? हारा हुआ व्यक्ति है, दुखी है, डिस्टर्ब्ड है, और इनसिक्योर है, डिफीटेड है, जी टेंशन में है, और कोई ना कोई प्रकार के पेन में है, सौरव में है, दुख में है, पेन है। अब नॉर्मल व्यक्ति में जब हम कोई शारीरिक कोई प्रकार के पेन में देखते हैं, दुख में, दुख दर्द में देखते हैं शारीरिक रूप में, तो हम क्या करते हैं? तुरंत कोई, अभी कोई गिर जाता है और शरीर उसको दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? सहयोग देते हैं ना। कोई भी रूप से अगर हम किसी व्यक्ति को दर्द में देखते हैं तो तुरंत हम उसको क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। तो उस रूप में अगर हम उसकी मानसिक स्थिति को उस समय देखें, हाव भाव को देखें, तो वो भी एक आंतरिक रूप में एक दर्द है, आंतरिक रूप में असंतुलन है, आंतरिक रूप में अशांति है, आंतरिक रूप में वो एक, जिसको हम कहेंगे संतुलन की कमी महसूस कर रहा है, तो उसके प्रति फिर हमारा दृष्टिकोण क्या होगा? उस गहराई से अगर हम देखते हैं तो हम क्या करना चाहेंगे उसको सहयोग देने के लिए? हम क्या करना चाहेंगे? हम शांत हो जाते हैं। सही बात। तो एक है कि बाह्य रूप से इमेज देखना, बाहर से हम इमेज देखेंगे तो हमको लगेगा ये क्या व्यक्ति इतना जोर से मेरे साथ बात कर रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है, ये क्यों कह रहा है, लेकिन अगर हम उसकी गहराई को देखते हैं तो हम सचमुच देखते हैं। क्योंकि उस समय मुझे याद है जब ली भाई ने बहुत अच्छी तरह एक्ट किया था तो सभी बच्चों ने कहा कि अरे वो तो पेन में है, वो तो सौरव में है। तो उस गहराई को जब हम देखते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति सामने दिखाई देती, तब हम फिर उस व्यक्ति को हम जरूर सहयोग देना चाहेंगे। तो उस रूप में हम देखते हैं कि हम गहराई से चीज को देखें, जिसमें हम कहेंगे आध्यात्मिक समझ से, आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई से हम उस परिस्थिति को या उस व्यक्ति को देखें। तो हमको बाहर की बातों के पीछे कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, बाह्य परिस्थिति के पीछे अंडर करंट क्या है, वो समझ मिल जाएगी। लेकिन उसको न देखने का कारण ईगो है, अहम भाव है, जिसकी वजह से हम उस गहराई को नहीं स्वीकार करते या नहीं देख पाते। तो हम देखते हैं कि ईगो जो है उसको निकालने के लिए हम जरूर लक्ष्य रखते हैं, हम सभी को महसूस होता है कि ईगो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका कारण क्या है? कई लोग मानते हैं कि भाई मैं, मुझे ईगो तो नहीं है, मैं तो अपने स्वमान में रहता हूँ, नहीं मेरा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो होना चाहिए ना कुछ, तो ऐसे ही वो व्यक्ति बोलता रहे, मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार करता रहे, मैं कुछ भी ना बोलूं, तो मुझे तो अपने स्वमान में तो रहना चाहिए ना। तो हम अपने आप को समझते कि ये हमारा स्वमान है, लेकिन जब उस स्वमान में नम्रता का संतुलन नहीं रहता है तो सामने वाला व्यक्ति जब व्यवहार हमारे साथ करता है तो उसको क्या महसूस होता है कि व्यक्ति में अहम भाव आ चुका है। हमको लगता है ये समान है लेकिन उसमें संतुलन जो है नम्रता का वो नहीं है। तो अहम भाव और स्वमान और हीन भावना इन तीनों में अंतर है। हम ज्यादा करके इस आध्यात्मिक बहुत हमारे सुंदर जो हमारे रोज के प्रवचन होते हैं जिसको हम मुरली कहते हैं उसमें बहुत अच्छे स्पष्टीकरण इस पर आया है कि जैसे अभिमान और स्वमान इस दोनों के अंतर को हम कैसे महसूस करें। जहां अभिमान है वहां मान अपमान की महसूसता होगी, जहां स्वमान है वहां मान अपमान में समानता होगी। तो जैसे हमारे अंतर में कोई अभिमान है तो क्या होगा, जब कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छी तरह से व्यवहार कर रहा है, साधारण रूप में हमारी बात को स्वीकार कर रहा है, सुन रहा है, अच्छी तरह से हमारे साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है, तब तो ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके हमारे साथ व्यवहार में कुछ अंतर आ जाएगा, कुछ उनके कारणों के वजह से या कुछ उनकी अपनी नकारात्मकता के वजह से, तो क्या हो जाएगा, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हमको उससे अंदर आवेश आ जाएगा, हमको दुख महसूस होगा जिसके वजह से हम आवेश आ जाएगा और हम फिर उनके साथ उस रूप से अहम भाव से व्यवहार करेंगे या क्रोध से व्यवहार करेंगे या आक्रमण के रूप में अग्रेसिव रूप में हम उसके साथ व्यवहार करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये अंतर है। और जहां स्वमान है वहां क्या होता है कि हम वो व्यक्ति जो है वो जिस रूप से भी वो व्यवहार कर रहा है हमारे साथ, अच्छी तरह व्यवहार कर रहा है तो भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जब वो गलत रूप से व्यवहार हमारे साथ कर रहा है तो हम उसके पीछे गहराई से हम उसको झांकने की कोशिश करेंगे कि इस समय इसकी मानसिक स्थिति क्या है, किस कारण से व्यक्ति ऐसा कर रहा है, और उसको पहचान कर उस समय उसके प्रति अनुकूल व्यवहार करेंगे। अगर आपको लगता है कि उस समय उस व्यक्ति के साथ शांत रहना आवश्यक है तो आप शांत रहेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं फिर भी इस व्यक्ति को मुझे अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से कुछ बोलना आवश्यक है तो आप बोलेंगे भी, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति स्थिर रहेगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसमें अंतर आ जाता है। तो जहां अहम भाव आता है वहां हम देखते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति को की मानसिक स्थिति को पहचान नहीं पाते। और जहां दूसरा कारण है, एक है कि अभिमान और दूसरा हीन भावना, जो भी आंतरिक द्वंद्व है, बाह्य द्वंद्व है वो ईगो के कारण ज्यादा है, लेकिन आंतरिक द्वंद्व किसके कारण है, हीन भावना के कारण। आप देखेंगे जहां भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अपने प्रति जो हमारी नकारात्मकता होती है उसका मुख्य कारण हीन भावना रहती है, लो सेल्फ एस्टीम रहता है। तो जब हमारा स्वमान हम शक्तिशाली बनाते जाते हैं तो अपने प्रति भी पास्ट के बारे में चिंतन करना या जो भी हमारे साथ नकारात्मक बातें हुई है उसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाते कि ये बातों ने हमारे जीवन में कौन सा सकारात्मक योगदान दिया, इस रूप से हमको मजबूत किया, इस रूप में हमारे श्रेष्ठता लाई। मुझे याद है जब हम लोग एक प्रोग्राम कराने गए थे कंपनी में, तो वहां आपस में कुछ प्रोग्राम था इस रूप से कि वर्कशॉप कर रहे थे आपस में, तो उसमें कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, शक्तियां और कमजोरियों के ऊपर में आपस में ग्रुप में वो लोग डिवाइड करके बातचीत कर रहे थे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि उसी कंपनी में एक दूसरे वर्कर थे जो नॉन मैनेजमेंट स्टाफ में थे, फ्रंटलाइन वर्कर थे, और उनके परिवार में ये घटना हुई थी। जो वो वर्कर जो है उनको पहले से ही कुछ थोड़ा सा व्यसन की आदत थी और वो बढ़ती गई और ऐसा समय आया कि वो संपूर्ण रूप से वो अल्कोहलिक हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के तरफ से उसको वार्निंग आ गया कि अभी आपको ये जॉब तो छोड़ना ही होगा। और उस समय उनके बच्चे बहुत दो छोटे थे, पत्नी भी थी, तो पत्नी तो एजुकेशन नहीं था, तो उनके जो दूसरे फ्रेंड्स आदि थे उन्होंने बहुत सहयोग दिया उनके परिवार को, और उनकी पत्नी जो है उनको प्रोत्साहन करके कोई अलग कार्य जो है, चाहे कोई घर में सफाई का कार्य है, दूसरे कई कार्य हैं, उसमें उनको इन्वॉल्व किया गया। और ये तो व्यसन की वजह से इनका स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो गया, तो पूरे परिवार में जैसे एक टर्बुलेंस आ गया है, प्रॉब्लम्स आ गए। उसमें जो दो बच्चे हैं उन दोनों के साथ ये घटना हुई, दोनों के साथ ये अनुभव हुआ, लेकिन वो भाई सुना रहे थे कि वो दोनों बच्चों ने उस परिस्थिति को बहुत अलग दृष्टिकोण से सामना किया। उसमें जो बड़ा बच्चा था वो भी उस वातावरण के प्रभाव के कारण, अपने पिता के प्रभाव के कारण वो भी धीरे धीरे उस व्यसन में चला गया, दूसरे ड्रग्स आदि में चला गया। और जो छोटा वाला था उसको वो उस परिस्थिति की प्रेरणा से उसने देखा कि मेरी मदर जो है वो इतनी दृढ़ता से, इतनी मेहनत से कमाई भी कर रही है और मुझे पढ़ाने का भी उसका लक्ष्य है, तो उसने एजुकेशन शुरू किया अपना। इसने शाम को जो एजुकेशन करते हैं इवनिंग स्कूल ज्वाइन किया, दिन में वो मेहनत करता था, कहाँ वो भी काम करता था। और फिर वो उसने ग्रेजुएशन पूरा किया और उसी संस्था में, उसी भारत पेट्रोल में उसको फिर से जॉब मिल गया। तो वो भाई बता रहे थे कि परिस्थिति दोनों बच्चों के सामने वही थी, लेकिन भूतकाल की उस परिस्थिति को किस मानसिक स्थिति से आपने स्वीकार किया। तो उस रूप में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो अंदर ही अंदर अपने नकारात्मक जीवन की परिस्थितियों का चिंतन करते हुए अपने मानसिक स्थिति को नीचे करते रहते हैं, अपने स्वमान को नीचे करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, तो पास्ट को भूल नहीं पाते हैं, उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देख पाते हैं। कई है जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसमें जो उनके सामने कई बार जो हार होती है या कई बार जो डिफिकल्टीज आती है उसके प्रति भी वो सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रख सकते, जब जीवन के ऊंचे लक्ष्य को सामने नहीं देखते। क्योंकि वर्तमान में चलो किसी ने बात स्वीकार की, किसी ने नहीं किया, ये हुआ नहीं हुआ, लेकिन जीवन का हमारा ऊंचा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए यहाँ आए हैं, किस दिशा में हमको जाना है। और तीसरा है कि भविष्य के बारे में जो भविष्य की चिंताएं हैं, तो अगर वर्तमान हमारा श्रेष्ठ है ही तो भविष्य तो श्रेष्ठ है ही। और दूसरा कि भविष्य के प्रति हम चेतक जरूर रहें, तैयार जरूर रहें, प्रेरणा से हम समझ सकें। जैसे अगर स्वास्थ्य है तो हम अपने स्वास्थ्य के आधार से जरूर चेतक रहें कि भाई कोई अगर स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है तो हम उसको उस रूप से सॉल्व करें, डॉक्टर्स के पास जाएं, हम अपनी जीवन शैली को ऐसे स्वस्थ बनाएं, सकारात्मक बनाएं। तो भविष्य के प्रति भी हमारी इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज हम डेवलप करें। तो ये तीनों चीजों को अगर हम देखते हैं तो हमारे आंतरिक जो द्वंद्व है वो समाप्त होते जाते हैं। जब अंतर में संतोष आ जाता है, स्वमान की स्थिति आ जाती है, तब बाह्य कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बहुत सॉल्व करना सहज हो जाता है। फिर जो आपस में वाद विवाद होते हैं अहम भाव के कारण जो है वो सॉल्व करना सहज हो जाता है। तो ये दोनों ही हम देखते हैं कि मुख्य कारण है कॉन्फ्लिक्ट के। इसके समाधान की दिशा में हम कैसे जाएं उसके लिए और गहराई से हमारे जो कल का सेशन होगा थर्ड सेशन उसमें हम देखेंगे। तो आज हमने यही देखा कि मुख्य बातें हमने देखी, तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है, जब हमारी स्मृति, जैसे आपको बहुत सुंदर सुबह गीता बहन बता रहे थे कि समाधान की शुरुआत हमारी स्मृति से आती है, तो जब हमारी स्मृति में हम परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे हमने देखा कि पास्ट के लिए अगर हम गिल्ट रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पास्ट की बात हमारे मन को परेशान करती रहती है, लेकिन अगर हम उस गिल्ट को छोड़कर सकारात्मक स्मृति में अपने आप को ले आते हैं, उसी परिस्थिति में हम कोई सकारात्मकता को देखते हैं, तो स्मृति परिवर्तन होने की वजह से हमारी भावनाएं परिवर्तन हो जाती, हमारे विचार परिवर्तन हो जाते हैं, और विचारों में जब हमारी सकारात्मकता आती है तो वृत्ति भी हमारी सकारात्मक होती है। जो सुबह आपने देखा ना कि वृत्ति के आधार से हम परिस्थिति को उस दृष्टिकोण से देखते हैं, और वृत्ति में जो सकारात्मकता आती है तो हमारा दृष्टिकोण, क्योंकि वृत्ति जैसे ग्लासेस हैं, कोई रंग के हम ग्लासेस पहन देते हैं तो हर चीज उसी रंग की दिखाई देती है, तो वृत्ति में वो सकारात्मकता आ जाती है, और वृत्ति के कारण फिर हमारी दृष्टि में उसी परिस्थिति को हम उस सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और जब हम कोई परिस्थिति को उस सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसके प्रति हम जब क्रिया करते हैं, कर्म हम करते हैं, तो जैसे फिर हमारी दृष्टि होती है ऐसी हमारी कृति हो जाती है, उसके प्रति हम सकारात्मक रूप में व्यवहार करते हैं, और कृति जब हमारी सकारात्मक होती है तो ऐसा हम अनुभव करते हैं, तो उसी रूप से हमारी अनुभूति होती है जो हमारी स्मृति को और मजबूत बना देती है। तो स्वयं के प्रति जब हमारी स्मृति कमजोर है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में जब हमारी हीन भावना है, हम अपने आप को हीन भाव के दृष्टिकोण से ही महसूस करते हैं, तो उस स्मृति के कारण हमारे अपने प्रति जो चिंतन चलता है, जो भावनाएं होती है उसमें नकारात्मकता होती है, और उसकी वजह से अपने प्रति हमारी मनोवृत्ति और दृष्टि और कृति उस रूप से होती है। लेकिन जब हम अपने प्रति स्वमान जागृत करते रहते हैं फिर धीरे धीरे राजयोग के अभ्यास के द्वारा और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये जो स्मृति का परिवर्तन आ जाता है, फिर कृति में परिवर्तन आना सहज हो जाता है। लेकिन आज हम जब कोई भी परिवर्तन का प्रयास करते हैं तो डायरेक्ट हम कर्म में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पीछे की हमारी उस परिस्थिति या स्वयं के प्रति दृष्टि अभी तक बदली नहीं, हमने अपनी वृत्ति को नहीं बदला है, अपनी भावनाओं को नहीं बदला है, विचारों को बदला नहीं है, अपनी स्मृति को नहीं बदला है। इसलिए वो कर्म में जो सोल्यूशन है थोड़े समय के लिए होना है, और फिर वापस जब वो सिचुएशन दूसरी बार आती है फिर हम उसका सामना नहीं कर पाते। इसलिए परिवर्तन जो स्थायी रूप से हमें लाना है, चाहे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है या संबंधों में कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो परिवर्तन स्मृति से लाना आवश्यक है। तो उसके बारे में और स्पष्टीकरण आपको हमारे थर्ड सेशन में होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन क्या है, पॉइंट्स ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, समाधान के केंद्र बिंदु।